एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने सच कहूं तो पहचान और लिंग पर हमारी सोच की चूले हिला दी।
बिल्कुल, एक ऐसी किताब जो आई तो 1990 में थी, लेकिन जिसके आइडियाज आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा बहस के केंद्र में हैं।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं जूडिथ बटलर की बहुत ही चर्चित और हाँ उतनी ही चुनौतीपूर्ण किताब जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी।
हाँ, और जेंडर ट्रबल देखिए, नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। ये किताब वाकई परेशानी खड़ी करती है उन सारे विचारों के लिए जिन्हें हम अक्सर प्राकृतिक या बिल्कुल सामान्य मानकर चलते हैं।
सही बात है।
आज जब पहचान, लिंग, सामाजिक नियमों पर इतनी चर्चा हो रही है तो बटलर के विचार हमें एक अलग ही नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, ये किताब सीधा सवाल पूछती है जिसे हम असली मर्द या असली औरत कहते हैं, क्या वो वाकई उतना असली है या उतना अंदरूनी है या फिर ये कुछ और ही कहानी है। इसी पहेली को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं।
बढ़िया, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से ही। ये जूडिथ बटलर हैं कौन और क्यों इनके विचार इतने प्रभावशाली माने जाते हैं?
देखिए, जूडिथ बटलर एक अमेरिकी दार्शनिक है और जेंडर थ्योरिस्ट हैं। उनकी खासियत ये है कि वो फिलॉसफी के दर्शन शास्त्र के औजारों का इस्तेमाल करके नारीवाद के ही कुछ बुनियादी सवालों पर उंगली उठाती हैं।
अच्छा।
हाँ, सोचिए जैसे कोई मैकेनिक अपने औजार लेकर गाड़ी ठीक करने के बजाय औजारों को ही देखने लगे कि भाई ये औजार ही ठीक है या नहीं।
दिलचस्प उपमा है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि समाज में लिंग भेद क्यों हैं, बल्कि ये पूछ रही हैं कि लिंग का जो आइडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं उसमें ही तो कोई गड़बड़ नहीं।
एकदम सही। वो मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट विचारकों से काफी प्रभावित हैं। पर उनकी जो मौलिकता है वो इस बात में है कि वो दर्शन की कठोर विश्लेषण वाली जो पद्धति है उसको फेमिनिस्ट और क्वेर थ्योरी के सवालों पर लागू कर दिया।
ओके।
जहां पहले फेमिनिज्म सेक्स यानी जैविक लिंग और जेंडर यानी सामाजिक लिंग में फर्क करता था,
वो तो काफी समय तक चला।
बिल्कुल, बटलर कहती हैं कि भाई मामला इतना सीधा है नहीं। जिसे हम नेचुरल या प्राकृतिक सेक्स समझते हैं ना, वो भी हमारी जो सांस्कृतिक समझ है उससे ही आकार लेता है।
अच्छा, यानी वो पहचान के व्याकरण को ही डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। ये नहीं कि पहचान क्या है बल्कि पहचान बनती कैसे है। कमाल है।
हाँ, और यही बात उन्हें अकादमिक दुनिया और सामाजिक आंदोलनों दोनों में ही एक बहुत जरूरी आवाज बनाती है।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, जेंडर ट्रबल। ये किताब आखिर कहती क्या है, इसका सार क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि जेंडर ट्रबल कोई हल्की फुल्की आसान सी किताब नहीं है।
हाँ, सुना है काफी मुश्किल है,
थोड़ी अकादमिक है, भाषा भी थोड़ी जटिल है। और इसका इरादा ही यही था कि नारीवाद और दर्शन में पहचान को लेकर जो एक तरह की आरामदेह धारणाएं बन गई थी उनको चुनौती दी जाए, उनको हिलाया जाए।
और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार वो क्या है?
वो है परफॉर्मेटिविटी का आइडिया। बटलर कहती हैं कि जेंडर कोई अंदरूनी चीज नहीं है जो हमारे पास होती है, जैसे मान लीजिए हमारी आंखों का रंग, बल्कि जेंडर कुछ ऐसा है जो हम लगातार करते हैं, एक तरह का प्रदर्शन।
प्रदर्शन,
आप कह रही हैं जैसे स्टेज पर कोई एक्टिंग कर रहा हो।
पूरी तरह एक्टिंग नहीं, उससे थोड़ा अलग है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला एक अनकहा सा दोहराया जाने वाला प्रदर्शन है।
अच्छा, कैसे? जैसे हमारे चलने का तरीका, हमारे बोलने का लहजा, कपड़े पहनने का ढंग, हमारे हाव भाव, ये सब मिलकर समाज में मर्द होने या औरत होने का मतलब गढ़ते हैं। और ये जो लगातार दोहराव है ये एक भ्रम पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर कोई स्थायी, कोई असली लिंग पहचान बैठी हो।
ओके।
बटलर के अनुसार इस प्रदर्शन के पीछे कोई मूल पहचान है ही नहीं, ये प्रदर्शन ही असल में पहचान को बनाता है।
एक मिनट, ये थोड़ा समझाएंगे, प्रदर्शन ही पहचान बनाता है?
हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे मान लीजिए शादी में कोई कहता है हाँ मैं कबूल करता करती हूँ।
हाँ।
तो वो सिर्फ एक बयान नहीं दे रहा,
नहीं,
या दे रही है, वो कहने का काम ही शादी को संपन्न करता है ना?
हाँ बिल्कुल।
वैसे ही जेंडर वाले जो काम हम रोज करते हैं, जिस तरह चलते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी जेंडर पहचान को बनाते हैं, उसे स्थापित करते हैं।
बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है कि जिसे हम अपना स्वभाव या नेचर मानते हैं वो शायद समाज का सिखाया हुआ एक तरह का अभिनय है जिसे हम दोहराते रहते हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल वो उठाती हैं नारीवादी आंदोलन पर,
क्या
कि क्या हम सब महिलाएं हैं जैसी एक स्थिर एक पक्की श्रेणी बनाकर राजनीति करना सही है। बटलर कहती हैं कि ये महिला की श्रेणी खुद ही समस्याग्रस्त है।
कैसे?
कौन है इस श्रेणी में? क्या ये अनजाने में एक खास तरह की महिला को, जैसे पश्चिमी, श्वेत, मध्यवर्गीय, उसको मानक बना देती है और बाकियों को, जैसे अश्वेत महिलाएं, लेस्बियन ट्रांस महिलाएं, मजदूर वर्ग की महिलाएं, इनको हाशिए पर डाल देती है?
ओहो, तो वो पहचान की राजनीति की जो नींव है उस पर ही सवाल उठा रही हैं।
हाँ, और वो एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाती हैं जिसे वो कहती हैं हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स।
वो हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स, ये क्या है?
ये एक तरह का अदृश्य सामाजिक ढांचा है, नियमों का जाल है, जो हमें सिखाता है कि जैविक लिंग, सेक्स, लिंग पहचान जेंडर, और यौन इच्छा डिजायर, ये तीनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए।
मतलब?
मतलब जैसे अगर कोई जैविक रूप से पुरुष जन्मा है तो समाज उम्मीद करता है कि उसे पुरुष जैसा ही दिखना और व्यवहार करना चाहिए और उसे महिलाओं के प्रति ही आकर्षित होना चाहिए।
अच्छा।
और इस मैट्रिक्स से, इस सीधी रेखा से जो भी चीज बाहर जाती है उसे समाज असामान्य या अप्राकृतिक मानने लगता है।
अच्छा, तो ये वो अनकहे नियम हैं जो तय करते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं।
सही पकड़ा। और किताब का अंत इस विचार पर होता है कि राजनीति स्थिर पहचानों पर टिकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे गठबंधनों और ऐसे प्रदर्शनों पर आधारित होनी चाहिए जो इन नियमों को, इस मैट्रिक्स को ही परेशान करें, उसे चुनौती दें।
ठीक है, ये तो किताब का एक मोटा मोटा नक्शा सा बन गया दिमाग में।
जी।
अब जरा इसके अध्यायों में और गहराई से झांकते हैं।
जी।
पहले अध्याय में बटलर क्या कहती हैं?
पहला अध्याय है सेक्स जेंडर इच्छा के विषय, सब्जेक्ट्स ऑफ सेक्स जेंडर डिजायर, और यहीं से बटलर असल में नींव हिलाना शुरू करती हैं। वो सीधा सवाल पूछती हैं कि नारीवाद का विषय कौन है, ये महिलाएं कौन हैं, क्या ये शब्द सबके लिए एक ही मतलब रखता है? वो तर्क देती हैं कि ये कैटेगरी अक्सर एक खास तरह की महिला को केंद्र में रखकर बाकियों को बाहर कर देती हैं।
और यहीं वो सेक्स और जेंडर के बीच जो पारंपरिक भेद किया जाता था उस पर सवाल उठाती हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। वो कहती हैं कि जिसे हम प्राकृतिक जैविक सेक्स मानते हैं उसे भी हम जेंडर की समझ के बिना नहीं देख पाते, मतलब हमारा जो बायोलॉजी है वो भी हमारी कल्चरल समझ से प्रभावित होता है।
अच्छा।
और इसी अध्याय में वो हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स का आइडिया पेश करती हैं, वो अदृश्य नियम जो तय करते हैं कि सेक्स जेंडर और इच्छा कैसे जुड़ने चाहिए, कैसे अलाइन होने चाहिए।
तो पहले अध्याय में ही वो मुख्य धारणाओं पर सवाल खड़े कर देती हैं, फिर दूसरे अध्याय में क्या होता है? सुना है वो काफी मुश्किल माना जाता है।
दूसरा अध्याय निषेध, मनोविश्लेषण और हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स का उत्पादन, प्रोहिबिशन, साइकोएनालिसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स। हाँ, ये वाकई थोड़ा सा घन है। बटलर यहाँ फ्रॉयड, लाकॉन जैसे मनोविश्लेषकों के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको जस का तस मानने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आलोचना करने के लिए। वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि समाज में कुछ नियम और वर्जनाएं, जैसे परिवार में यौन संबंध का निषेध जिसे इनसेस्ट टैबू कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं
और इसका लिंग पहचान से क्या लेना देना है।
बटलर का तर्क है कि ये जो वर्जनाएं हैं ये कुछ इच्छाओं को, जैसे समलैंगिक इच्छा को, असंभव या गलत या सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा बना देती हैं।
अच्छा।
और ऐसा करके ये अप्रत्यक्ष रूप से विषम लैंगिकता यानी हेट्रोसेक्सुअलिटी को अनिवार्य बना देती है, उसे नॉर्मल बना देती है।
ओके।
मतलब हमारी जो स्थिर लिंग पहचान बनती है पुरुष या महिला, वो असल में उन दूसरी संभावनाओं को दबाने या नकारने पर टिकी होती है जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हर स्थिर दिखने वाली पहचान वो अंदर से अस्थिर होती है, क्योंकि वो उन चीज़ों पर बनी है जिन्हें उसने बाहर रखा है, जिन्हें उसने दबाया है, जैसे किसी इमारत की नींव में कुछ चीज़ों को दबा दिया गया हो।
अच्छा, मतलब हमारी नॉर्मल पहचान असामान्य को बाहर रखकर ही बनती है। ये तो काफ़ी गहरा विचार है। अब तीसरे अध्याय पर आते हैं, उसे तो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है परफॉर्मेटिविटी के लिए।
तीसरा अध्याय विध्वंसक शारीरिक कृत्य, सबवर्सिव बॉडीली एक्ट्स।
बिल्कुल।
ये सिद्धांत को जमीन पर लाता है, उसे शरीर और प्रदर्शन से जुड़ता है। यहीं पर परफॉर्मेटिविटी का विचार अपने पूरे शबाब पर आता है। बटलर फुको का हवाला देते हुए कहती हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं है,
समाज की शक्ति पावर उस पर लगातार काम करती है, उसे आकार देती है, उसे अनुशासित करती है, और जेंडर वो शरीर को अनुशासित करने का एक बहुत बड़ा तरीका है।
और यही वो परफॉर्मेटिविटी और परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन में फर्क भी साफ करती हैं।
हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस एक सचेत अभिनय हो सकता है, जैसे कोई एक्टर स्टेज पकड़ रहा है,
राइट।
लेकिन परफॉर्मेटिविटी ज्यादातर अनजाने में होती है, ये समाज के नियमों का कायदों का लगातार दोहराव है, जैसे हम किसी स्क्रिप्ट को अनजाने में फॉलो कर रहे हों बिना ये जाने कि ये स्क्रिप्ट है। लेकिन मजे की बात ये है कि क्योंकि ये दोहराव है, एक तरह का उद्धरण साइटेशन है, मतलब हम पहले से मौजूद नियमों को ही कोट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो इसे अलग ढंग से भी दोहराया जा सकता है।
अच्छा,
और यहीं पर बदलाव की या जिसे बटलर सबवर्जन कहती हैं उसकी गुंजाइश पैदा होती है।
इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, सबसे मशहूर उदाहरण जो बटलर देती हैं वो है ड्रैग।
ड्रैग मतलब जब कोई मर्द औरतों वाले कपड़े पहनता है या औरत मर्दों वाले?
हाँ, जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा विपरीत लिंग से जुड़े गए कपड़े और हाव भाव अपनाता है। बटलर कहती है कि ड्रैग सिर्फ दूसरे जेंडर की नकल नहीं उतार रहा।
तो फिर क्या है?
ये एक तरह की पैरोडी है, एक व्यंग्य है, जो ये दिखाता है कि सारे जेंडर ही नकल पर आधारित हैं।
क्या बात है।
हाँ, ड्रैग ये उजागर करता है कि नकल करने के लिए कोई असली या मूल जेंडर है ही नहीं, सब सिर्फ नकलें हैं जिनका कोई ओरिजिनल मौजूद नहीं है। ये तथाकथित सामान्य स्त्रीत्व या पुरुषत्व की भी बनावकी कृत्रिम प्रकृति को खोल कर रख देता है।
वाह, तो ड्रैग सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि एक तरह की सामाजिक कॉमेंट्री है जो जेंडर की पूरी बनावट पर ही सवाल उठा देती है।
बिल्कुल, बटलर मानती हैं कि ऐसे विध्वंसक कृत्य जो हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स के नियमों को तोड़ते हैं या उनसे खेलते हैं, उनमें एक राजनीतिक क्षमता होती है।
और किताब का निष्कर्ष वो था पैरोडी से राजनीति तक। तो अगर महिला जैसी कोई स्थिर श्रेणी नहीं है तो फिर नारीवादी राजनीति कैसे होगी? कौन किसके लिए लड़ेगा?
बटलर का जवाब है कि राजनीति के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक ठोस परिभाषित पहचान पर ही टिकी हो। हम सब एक हैं वाली पहचान की राजनीति के बजाय वो गठबंधन, कोलिशन और प्रदर्शन पर आधारित राजनीति का प्रस्ताव रखती हैं।
गठबंधन और प्रदर्शन मतलब?
मतलब अलग अलग हाशिए के समूह जिनकी पहचानें अलग अलग हो सकती हैं, वो उन सामाजिक नियमों के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं जो उन सबको किसी न किसी तरह से दबाते हैं।
अच्छा,
राजनीतिक एक्शन का मतलब हो सकता है सामूहिक रूप से जेंडर के नियमों को गलत तरीके से निभाना, उनको चुनौती देना, उनकी बनावटी प्रकृति को उजागर करना।
तो लक्ष्य है सबके लिए लिंग अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ाना, नियमों की जो जकड़न है उसे ढीला करना।
हाँ बिल्कुल, यही उनका मुख्य तर्क है इस किताब में।
ये तो वाकई मतलब दिमाग घुमा देने वाले विचार हैं। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेक अवेज निकालने हो जिन्हें श्रोता याद रख सकें, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात है, जेंडर एक प्रदर्शन है, कोई अंदरूनी सार नहीं। हम जो रोज करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, वही हमारा जेंडर बनाता है। वो कोई अंदरूनी असली पहचान नहीं है जो पहले से मौजूद हो।
ये सोचना कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, ये सब सीखे हुए प्रदर्शन है।
हाँ, जैसे कोई खास तरीके से चलना या बोलना जिसे समाज मर्दाना या जनाना मानता है, वो सीखा हुआ है, दोहराया जाता है।
ठीक है, दूसरी बात।
दूसरी बात, प्राकृतिक सेक्स और सामाजिक जेंडर का जो भेद हम करते हैं वो असल में काफी धुंधला है। बटलर कहती हैं कि हम जैविक सेक्स को भी जेंडर के चश्मे से ही देखते हैं।
अच्छा।
हाँ, ये उस सोच को चुनौती देता है कि पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं उनके शरीर की बनावट से तय होती हैं। जरा सोचिए, जन्म के समय लिंग बताकर जो उम्मीदें लाद दी जाती हैं वो कितनी प्राकृतिक हैं।
सही कहा। तीसरा पॉइंट।
तीसरा, स्थिर और पक्की पहचान, एक तरह का भ्रम है। हमारी कोई भी पहचान, चाहे वो जेंडर हो, धर्म हो, राष्ट्रीयता हो, वो पत्थर की लकीर नहीं है। वो लगातार बनती बिगड़ती रहती है, समाज और सत्ता के समीकरणों से प्रभावित होती है। ये उन आंदोलनों के लिए एक चुनौती है जो सोचते हैं कि एक समूह के सब लोग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं।
हाँ, ये तो हम खुद भी महसूस करते हैं ना, कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ हम थोड़ा अलग महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं।
बिल्कुल। चौथा, हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स की पकड़ को समझना जरूरी है।
वो अदृश्य नियम जो तय करते हैं कि कौन सा रिश्ता, कौन सी यौन इच्छा सही है और कौन सी गलत या अप्राकृतिक।
हाँ, ये हमारे आसपास शादी, परिवार, प्यार को लेके जो सामाजिक दबाव होते हैं उनमें साफ दिखता है।
एकदम। और पांचवा, बदलाव की राजनीति पैरोडी, नकल और नियमों को तोड़ने में है। प्रतिरोध का मतलब सिर्फ नारे लगाना या जुलूस निकालना ही नहीं है। प्रतिरोध इसमें भी है कि जेंडर के नियमों को जानबूझकर या अनजाने में गलत तरीके से निभाया जाए, जैसे ड्रैग करता है या जैसे कोई भी व्यक्ति जो समाज की तयशुदा भूमिकाओं में फिट नहीं होता। ये दिखाता है कि नियम कितने खोखले और बनावटी हैं।
सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार छोटी छोटी चीजों में अपेक्षाओं को तोड़ते हैं, शायद अनजाने में ही सही।
बिल्कुल।
ये सारे बिंदु हमें अपनी पहचान और अपने आसपास के समाज को बिल्कुल एक नए तरह से देखने पर मजबूर करते हैं। बटलर की भाषा भले ही थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन उनके विचारों में वाकई दम है।
हाँ।
एक विचार जो मुझे खास तौर पर याद रह गया वो ये कि लिंग पहचान लिंग की अभिव्यक्तियों के पीछे नहीं होती है। वह पहचान प्रदर्शनकारी रूप से उन्हीं अभिव्यक्तियों द्वारा गठित होती है जिन्हें उसका परिणाम कहा जाता है। मतलब हम जो करते हैं वही हमें बनाता है। कर्म ही अस्तित्व है एक तरह से।
हाँ, और एक और बात जो परफॉर्मेटिविटी को बहुत अच्छे से समझाती है, जेंडर शरीर का बार बार किया जाने वाला शैलीकरण है जो समय के साथ जमकर एक सार का आभास पैदा करता है। ये दिखाता है कि लगातार दोहराव कैसे किसी चीज को प्राकृतिक या असली जैसा बना देता है। जैसे रोज एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वो लगती है जैसे हमेशा से थी, पर वो बनी तो चलने से ही है। वैसे ही रोज एक जैसा व्यवहार करने से पहचान जम जाती है।
ये बातें सुनने में तो बड़ी अकादमिक लगती हैं, पर इनका हमारी असल जिंदगी से भी तो गहरा नाता है, नहीं? बिल्कुल।
जरा सोचिए, व्यक्तिगत स्तर पर ये विचार उन लोगों को समझने में मदद करते हैं जिनकी पहचान या अभिव्यक्ति पारंपरिक मर्द और औरत के खाचों में फिट नहीं बैठती, जैसे नॉन बाइनरी लोग, ट्रांसजेंडर लोग या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग लोग।
हाँ,
ये लिंग की विविधता और उसकी तरलता को, उसके बहाव को मान्यता देता है। ये बायोलॉजी से परे जाकर खुद को स्वीकार करने में मदद कर सकता है।
और बच्चों की परवरिश और शिक्षा में भी इसका बड़ा महत्व हो सकता है।
हाँ बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को जबरदस्ती लड़के या लड़की वाली भूमिकाओं में न ढालें, उन्हें अपनी पसंद और अभिव्यक्ति की आज़ादी दें। स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल माहौल बनाना, पाठ्यक्रम में जो रूढ़ियां हैं उनको चुनौती देना, ये सब इसी सोच से जुड़ता है।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी तो इसके मायने हैं।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अपनी पहचान वाले समूह के लिए लड़ने के बजाय उन सभी समूहों के साथ गठबंधन बनाएं जो समाज के कठोर नियमों से किसी न किसी तरह परेशान हैं।
जैसे?
या आदिवासी अधिकार समूह, ये सब कुछ मुद्दों पर साथ आ सकते हैं क्योंकि वो सब किसी न किसी रूप में सामाजिक जकड़न और भेदभाव का शिकार हैं। ये गठबंधनात्मक राजनीति, कॉलिशनल पॉलिटिक्स का आइडिया है।
और दफ्तरों और काम की जगहों पर, वहाँ भी इसका असर दिख सकता है।
जरूर। जैसे सबके सर्वनाम का सम्मान करना, ऐसी HR नीतियाँ बनाना जो हर तरह की पहचान को जगह दें, सिर्फ बाइनरी नहीं, विज्ञापन और मार्केटिंग में घिसी पिटी छवियों से आगे बढ़ना। स्वास्थ्य सेवाओं में भी, जैसे ट्रांस या इंटरसेक्स लोगों की जरूरतों और उनकी पहचान का सम्मान करना।
और हाँ, संस्कृति और मीडिया को समझने का भी एक नया लेंस मिलता है इससे।
बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि फिल्में, टीवी शो, विज्ञापन कैसे लगातार जेंडर के सही तरीकों को दिखाते हैं और मजबूत करते हैं।
हाँ, वो शरीर का शैलीकरण वाली बात।
एग्जैक्टली। और साथ ही उन पलों को भी पहचान सकते हैं जहां इन नियमों को तोड़ा जा रहा है, जैसे कोई नॉन बाइनरी सेलिब्रिटी हो या कोई ड्रैग परफॉर्मर, और समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि ये राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से एक बड़ी सीख ये मिलती है कि जिसे हम अपनी सबसे निजी, सबसे अंदरूनी चीज मानते हैं, जैसे हमारी लिंग पहचान, वो असल में बाहरी सामाजिक ताकतों और नियमों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, उनसे बनी हुई है। ये हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने को उकसाती है जिसे हम मानकर चलते हैं, जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
बिल्कुल। और ये परफॉर्मेटिविटी का विचार कि पहचान होना नहीं बल्कि करना है, ये सच में क्रांतिकारी है।
है तो?
एक तरफ तो ये आज़ादी देता है, मुक्तिदायक है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम अपनी पहचान को बदल सकते हैं, उसे फिर से गढ़ सकते हैं, उसकी पुनर्कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ा बेचैन करने वाला भी है, क्योंकि ये हमारे एक स्थिर पक्के मैं के विचार को ही हिला देता है, उसे भंग कर देता है।
सच का। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर जेंडर एक सीखा हुआ प्रदर्शन है जिसे समाज के नियम आकार देते हैं, तो हमारी पहचान के और कौन कौन से हिस्से ऐसे ही सीखे हुए प्रदर्शन हो सकते हैं? क्या हमारी राष्ट्रीयता भी एक प्रदर्शन है? हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी क्लास, हमारी पसंद नापसंद?
सोचने वाली बात है।
क्या होगा अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रदर्शनों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएं और उसमें जानबूझकर छोटे छोटे ही सही बदलाव लाने की कोशिश करें?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारा अंश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।